आगे I-36 से ऑनवर्ड, ये वो पारा कि जिसके शुरू में इतनी बातें हैं और आखिरी हिस्सा जो है इसमें आप देखेंगे सिर्फ तर्जुमा भी काफी होता है। क्यों? क्योंकि तौहीद बंदे की फितरत में गुंदी हुई है। इन्ना मयस्तजीब उल्लज़ीना यस्माउन, वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे। यानी सुनने की तौफीक भी अल्लाह उन्हीं को देता है जिनमें खैर होती है। और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मौजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मौजज़ा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर हैं। और जितनी किस्म के जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिंद जानवर हैं, ये अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, और इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं है कि जो तुम्हारी तरह के गिरोह ना हो। हमने दफ्तर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते हैं, वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह जिसको बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। हमारी शरीयत किताबों में है, परिंदों, चिड़िया, तोतों और जानवरों की शरीयत उनकी फितरत इंस्टिंक्ट में। इसीलिए आप देखते हैं कि शेर भूख से मर जाएगा लेकिन सब्जी नहीं खाएगा, और इसी तरह जो सब्जी खाने वाले जानवर है वो भूख से मर जाएंगे लेकिन गोश्त नहीं खाएंगे। तो जानवरों में हलाल हराम का इतना फर्क है, तो फिर बताइए कि हमारा इंसानों में हलाल और हराम के साथ क्या मामला होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला आगे इनसे सवाल करते हैं, कुल अराईतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, आप कहिए अपना हाल तो बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह ताला का कोई अजाब आ पड़े या तुम पर क्यामत ही आ पहुंचे, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, बल्कि खास इसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो इन सब को भूल भाल जाओगे। और हमने और उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, बस हमने इनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इजहारे इज्ज कर सकें। क्या पता चला कि बीमारियां और परेशानियां बंदे को आजिज बनाने के लिए आती हैं। सो जब इनको हमारी सजा पहुंचती थी तो उन्होंने आजिज़ी इख्तियार क्यों ना की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल को इनके ख्याल में आरास्ता कर दिया। फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूले रहे जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब हम इन चीज़ों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, हमने इनको अचानक पकड़ा, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई, और अल्लाह का शुक्र है जो तमाम आलिम का परवरदिगार है। ये आयत 44 और 45 नोट कर लें। अल्लाह ताला का कानून इमहाल, मोहलत देने का कानून। अल्लाह शुरू में ढील देता है, फिर जब बंदा ढील को नहीं समझ पाता तो फ़कूती अदा बिरुल कौमिल्लज़ीन ज़लमू। यहाँ नोट कर लीजिए आयत 45 पे एक बड़ा प्यारा सा फ्रेज़ है, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक में सूरत फातिहा के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आप हैरान होंगे अल्लाह के कुरान की इस तरतीब पे 7.5 पारों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, और आगे आप गिनते चाहिए हर 7.5 7.5 के बाद लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। ये एजाज़ुल कुरान है, ये गौर व फिक्र से मिलता है। अल्लाह ताला इस कुरान के लिए हमें वक्त देने वाला बना दे। कुल अराईतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, आप कहिए कि ये बतलाओ अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समात और बसारत ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है कि ये तुमको फिर दे दे? बोलिए, कोई नहीं दे सकता। आप कहिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं फिर भी ये एराज करते हैं? आप कहिए ये बतलाओ अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक आ पड़े, ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? बार बार धमकियां हैं, यह असल में इतमाम हुज्जत हो रहा है मक्का वालों पे। और पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बिशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्तगी कर ले, बस इन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और ना वो गमजदा होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं, इनको अजाब पहुंचेगा बवजह इसके कि वो नाफरमानी करते थे। अल्लाह ताला में नाफरमानियों से बचाए। आप कह दीजिए ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसका इत्तबा करता हूँ। आप कहिए कि अंदर बिना कहीं बराबर हो सकते हैं? जवाब दे। नहीं हो सकते। सो क्या तुम गौर नहीं करते और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे। जरा सा इमेजिनेशन में लाइए कि जितने गैर अल्लाह हैं इनका कोई मददगार ना होगा ना कोई शिफात करने वाला, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसकी रजामंदी का कसद रखते हैं, और आपका हिसाब जरा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। देखिए कितनी दो टोक आयते हैं। आइए तदब्बर करते हैं आयत नंबर 36 से ऑनवर्ड। मुसीबत से निजात के लिए अल्लाह से दुआ मांगिए अगर आप किसी मुसीबत में आ चुके हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपकी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता ना मेरी। अपने साथियों को कुरान पाक की आयतों के जरिए से नसीहत कीजिए और अपनी बातें कम से कम कीजिए ताकि उनको यकीन आ जाए कि आप अल्लाह की बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ बेतकल्लुफी होती है ना तो लोग आपकी बातें नहीं सुनना चाहते। गैब के दावेदारों, मुस्तकबिल की बातें जानने वालों का दावा करने वालों की हकीकत कुछ भी नहीं, ये बातिल हैं। इनकी हकीकत से लोगों को आगाह कीजिए, कभी किसी को हाथ ना दिखाइए क्योंकि अल्लाह ने बता दिया गैब मुझे पता है। ये इंसान की नेकियों को भी जाया करता है बल्कि उस दीन का इनकार है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। फिर कुरानी रहनुमाई, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिसके हाथ में हो उसी से मांगिए। बुनियादी कुशादगी अगर अल्लाह की शरीयत से दूर ले जाए तो वो हलाकत का सबब बन सकती है, यानी कई दफ़ा माल की वजह से बच्चे और औलादें बिगड़ जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे तो यकीनन कोई दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं जान सकता। लिहाजा अगर कभी ऐसा कोई दावा किसी ने किया हो कि मैं तो तुम्हारे दिल का राज जानती हूँ, और हमारी तो याददाश्त ऐसी होती है कि हम तो सासों और नंदों के अंदर की बातों के भी जानने के दावेदार करते हैं, उनकी तो नीयतों की भी खराबी का हमें यकीन होता है, तो यहाँ तौबा कीजिए। गौर व फिक्र की बातें, मुसीबत और तकलीफ के वक्त आजिज़ी से दुआ करना बंदे के लिए फ़ायदा मंद होता है। नेमतों की कसरत अल्लाह ताला की रजामंदी की दलील नहीं, क्योंकि हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, यहाँ जुमला लिख लीजिए, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, सेलफोन इम्तिहान का पर्चा। कुरान सारी मखलूक के लिए तंबीह करने वाला है लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं जो हशर पर यकीन रखते हैं, जो मशगूलियत के वक्त इबादत की तरफ मुतवज्जे होता है वो फुर्सत के वक्त ज्यादा अमल करने वाला होगा। अल्लाह आपको मुझे ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। आगे देखते हैं आयत नंबर 53 से, वकजालिक फतन्ना बादहुम भी बात, और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें क्या ये वो लोग हैं कि हम में से इन पर अल्लाह ने फजल किया, क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को खूब जानता है। कितनी खूबसूरत आयत है। बास लोग वाकई आजमाइश बन जाते हैं दूसरों की और उनको हिदायत से दूर कर देते हैं, और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिए कि तुम पर सलामती है। क्यों? ज़रा सा आयत पे गौर कीजिए, फ़कुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। ये थे अल्लाह के नबी बासी अदाइये दिन जो आपके पास आता था आयतों पे ईमान लाने के लिए, आप उसको सलाम अलैकुम कहते और अल्लाह की रहमतों की उम्मीद दिलाते, क्योंकि अन्नहु मन अमिल मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही वसलहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। पता क्या चला कि ऐसे लोग जो गुनाहों में डूब चुके थे, गफलत में थे, आप उनको अच्छे तरीके से वेलकम कीजिए। अल्लाह आज हमें भी ऐसे ही दाइये दीन बना दे। क्या कह दीजिए सुनिएगा, यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकरर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और इसलाह रखे तो अल्लाह की शान है कि वो बड़ी मगफरत करने वाला है, बड़ी रहमत वाला है। इसी तरह हम आयात की तफसील करते रहते हैं और ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए। आप कह दीजिए मुझको इससे ममानियत की गई है कि इनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। अल्लाह में भी अकीदे के ऐसे इजहार की तौफीक अता फरमाए। आप कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की तबाह ना करूंगा क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह रो हो जाऊंगा और राह रास पर चलने वालों में नहीं रहूंगा। अल्लाह हमें भी ऐसे ही कर दे। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से और तुम इसकी तकजीब करते हो, जिस चीज की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा बाहमी फैसला हो चुका होता। और जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है। कितनी क्लैरिटी थी नबी की अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के दौरान। अब इस आयत में गैब की कुछ कुंजियों का तذکرہ है। वह इंदहु मफातिहुल गैब, और अल्लाह ही के पास है गैब की कुंजियां यानी खजाने। इनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और वो तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है। और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर इसको भी वो जानता है। कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और ना कोई खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताबे मुबीन में है। यहाँ अल्लाह से कहिए कि अल्लाह तुझे तो हर चीज की खबर है, पत्ते को भी तू जानता, दाने को भी जानता, तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो है उसको भी तू जानता है। या अल्लाह खैर की सारी दुआएं कबूल फरमा, खैर के सारे इरादे कबूल फरमा। आगे रात में सोने की कुछ बातें। वहुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैल, और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक हिस्से से कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि तुम्हारी मुद्दत मुकर्रर पूरी की जाए, फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते हो। पंजाबी में कहते हैं सोया मोया एक बराबर। जब हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म से एक रूह निकल जाती है, लेकिन वो रूह वापस आ सकती है। जिस दिन हम मरेंगे ना उस दिन जो रूह निकलेगी वो वापस कभी नहीं आएगी। यानी एक रूह टू वे सफर करती है और एक रूह सिर्फ वन वे करती है। हर दिन सोने से पहले ये सोचिए कि शायद कब्र में आंख खुलेगी। वहुवल काहिरु फौक इबादी, कितना गलबा है आपके रब का आपके ऊपर, और वही अपने बंदे के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला भेजता है यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आ पहुंचती है। अपनी मौत को सोचिए, इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो जरा सी भी कोताही नहीं करते, फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। तो फिर जब जिंदगी उसके हाथ में, मौत उसके हाथ में, तो फिर हमें उसी की बात माननी है, उसी के हुक्म पे चलना है। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुल्मत से निजात देता है? आपके अंदर से पुकार आनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है मार्फत रब्बी। तुम इसको पुकारते हो गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके कि अगर तू ही हमको इनसे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। लिखिए, तकलीफ में फितरत पे पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं और हर बंदा मुआहिद हो जाता है। मैदाने जंग में हर बंदा मुआहिद होता है क्योंकि चारों तरफ मौत होती है। जब जहाज हिलता है ना तो सब मुआहिद हो जाते हैं। जब कश्ती डोलती है पानी में तो सब उस वक्त मुआहिद हो जाते हैं। कोई एथियस नहीं था टाइटैनिक पे क्योंकि उस वक्त अल्लाह ही याद आता है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से भी। अल्लाह मेरी बहनों को भी हर गम से निजात दे दे। तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो, यानी जब वो गम खत्म होता है तो कहते हो जी ये फलाने किया, फलाने बाबा जी ने कर दिया, ये जंतर मंतर पड़ा तो फिर ये हुआ वो हुआ। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पाँव के तले से, या कि तुमको गिरो गिरो करके सबको भिड़ा दे, तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद कि वो समझें। यह आयत इस बात की दलील के जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना तो हमारी औलादें हमारी नाफरमान हो जाती हैं। एक सहाबी थे, वो कहा करते थे कि मैं अपनी सवारी में जब अकड़ देखता हूँ ना तो मुझे अपने गुनाह याद आते हैं। और ये तीन दुआओं में से हैं जिसको अल्लाह के नबी ने मांगा तो दो कबूल हुई थी, एक नहीं हुई थी। और आपकी कौम इसकी तकजीब करती है हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए मैं तुम पर मुतय्यन तो नहीं किया गया, हर खबर के वकूअ का एक वक्त है और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखेंगे जो हमारी आयतों में ऐपजोई कर रहे हैं तो इन लोगों से किनारा कश हो जाएं यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें। फिर वही नुक्ता आ गया, गैर मुस्लिमों के साथ बैठना दिल से अल्लाह और उसके दीन की मोहब्बत को कम कर देता है। तदब्बुर और अमल की बात है। आपको अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इन पर शुक्र अदा कीजिए, बेशक शुक्र हिदायत और रिस्क की कुंजी है। इस जुमले को दोबारा लिख लें। बेशक शुक्र हिदायत और रिस्क की कुंजी है। तो शुक्र गुजार होगा जो उसको हिदायत भी ज्यादा मिलेगी और रिस्क भी ज्यादा। तन्हाई में चुपके चुपके और आजजी से अल्लाह ताला से अपनी हाजतों के पूरा होने की दुआ कीजिए और अल्लाह से कहिए मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा ना करना। दो झगड़ा करने वाले अफराद हों या गिरोह, उनमें सुलह करवाइए। कुरानी रहनुमाई, दाई का ख्वाहिश परस्त लोगों की तरफ से तकलीफ को बर्दाश्त करना और सब्र करना अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। वो कहता है ना कि दुश्मनों का शुक्रिया अदा करो कि उसने रब से ताल्लुक बढ़ा दिया। बेफायदा और बातिल मजलिसों से दूर रहिए, चाहे वो शादी ब्याह खुशी गमी के नाम पे हो। बहुत से फरिश्ते आपके अमाल और अकवाल को शुमार कर रहे हैं, लिहाजा अपने हर कौल और अमल का हिसाब सोच लें। या फिर देखिए, कौल कुछ करने से पहले सोचिए, कुछ लिखने से पहले सोचिए, कुछ बोलने से पहले सोचिए, और गौर व फिक्र की बातें। नेमते ईमान की कदरों कीमत पहचानने वाले लोग ही शाकिरीन होते हैं। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, वो नाफरमानों की नाफरमानी के बावजूद उनको रिस्क देता है। मसाइब और खुशहाली में सिर्फ अल्लाह को पुकारना, खैर और भलाई को भूलना शैतान की तरफ से होता है, और शैतान से बचने के लिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे, वमा अल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम, और जो लोग परहेजगार हैं इनकी बाज़ बरस का कोई असर नहीं पहुंचेगा, लेकिन इनके जिम्मे नसीहत कर देना है, शायद वो भी तकवा इख्तियार कर लें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहे जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल रखा है, और इस कुरान के जरिए से नसीहत भी करते रहे ताकि कोई शख्स अपने किरदार में इस तरह फंस ना जाए कि कोई गैर अल्लाह इसका ना मददगार हो और ना सिफारशी, और ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी इससे ना लिया जाए। ये ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए। इनके लिए नहायत गर्म पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक सजा होगी अपने कुफर के सबब। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें लोगों की हिदायत का जरिया बना दे। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाह, आप कह दीजिए क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें कि वो ना हमें नफा दे सके ना हमको नुकसान पहुंचाए? क्या हम उल्टे फिर जाएं इसके बाद के हमको अल्लाह ने हिदायत कर दी, जैसे कोई शख्स हो कि इसको शैतान ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वो भटकता फिरता हो, इसके साथी भी हो और वो इसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हो कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए यकीनी बात यह है कि राह रास वो खास राह अल्लाह ही की है, और हमको ये हुक्म हुआ कि हम परवरदिगारे आलम के मती हो जाएं, और ये कि नमाज की पाबंदी करो और इससे डरो, और वही है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। और ये कि नमाज की पाबंदी करो और इससे डरो, और वही है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया, और जिस वक्त अल्लाह ताला इतना कह देगा कि तू हो जा तो वो हो पड़ेगा। इसका कहना हक और बासर है, और सारी हुकूमत खास उसी की होगी जबकि सूर में फूक मारी जाएगी। वो जानने वाला है पोशीदा चीजों का और जाहिर चीजों का, और वही है बड़ी हिकमत वाला पूरी खबर रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 73 पे हमारा सुलास पूरा हुआ, और ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हुआ। आगे है जी वो खूबसूरत वाक्या जिसमें मार्फत तलाश हक अल्लाह की पहचान फितरत में पड़ी हुई है, शर्त ये कि फितरत सलीमा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या, वइस काला इब्राहिम लिअबीही ही आज़र, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है, बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को सरी गुमराही में देखता हूँ। और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की मखलूकात दिखाई, और ताकि कामिल यकीन करने वालों से हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया अगर मुझको मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब आफ्ताब को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। इन्नी वज्जहत वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और इनसे इनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू कर दी। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो? हालांकि इसने मुझे तरीका बतलाया है, और मैं इन चीज़ों से जिनको अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। इसे पता चलता है कि मोमिन मवाहिद निडर होता है। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार कोई अमर चाहे, मेरा परवरदिगार ही हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है, क्या फिर भी ख्याल नहीं करते? और मैं इन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया है? हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहराया जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। सो इन दो जमातों में से अमन का ज्यादा मुस्तहिक कौन है अगर तुम खबर रखते हो? क्या पता चला कि मुशरिक खौफजदा इंसान होता है। हुर्रियत आजादी तौहीद में है। जो एक से डरता है सब उससे डरते हैं, और जो एक से नहीं डरता वो सबसे डरता है। तो तदब्बुर और अमल की बातें। मुर्दों को पुकारने वालों को कुरान के जरिए नसीहत कीजिए कि मुर्दे नहीं सुनते। इस बात से अल्लाह ताला की पनाह मांगिए कि शैतान आपको बरगला कर अल्लाह के रास्ते से भटका ना दे। और ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त तक आप और मैं दीन पर कायम रहें। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि आप भी यकीन रखने वालों में से हो जाएं। आपको तो यकीन ईमान का सबसे ऊपर का दर्जा है। कुरान पाक से रहनुमाई, कुरान की आयत के जरिए दावत इल्लाह करना सबसे ज्यादा फायदा मंद है। अल्लाह के दीन को लतीफा गोई, खेल तमाशा और बेहुदा बातों का निशाना बनाने में मुहतात रहना चाहिए। अहले शिर्क घबराहट का शिकार, जबकि अहले ईमान पुरसुकून होते हैं। अल्लाह ईमान दे दे। गौर व फिक्र की बातें। किसी भी दीन और मजहब का मजाक उड़ाना दुरुस्त नहीं। खुदा किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, आदमी के गुनाह इसे कैदी बना देते हैं और इसे नेक आमाल के सवाब से महरूम कर देते हैं। लिहाजा नेकियां करके खुद को आजाद करवाइए। लिख लें यह जुमला, सबसे बुरी कैद गुनाहों की कैद है। पारे के थीम के साथ भी इसको लीजिए। गुनाह छुटते 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 हैं। दावत इल्लाह करते हुए लोगों की रियायत कीजिए। अल्लाह तला की बजाय मुर्दों से डरना जहालत है, वो अलहई है और आप मुर्दों से डर गए। मोहब्बत इबादत की असल है जिसे जाहिलों ने शिर्क की असल बना दिया। अल्लाह तला ऐसे लोगों को भी हिदायत दे दे। आगे बहुत प्यारी आयत है, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, आयत 82। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मिला जुला नहीं करते, यानी मखलूत नहीं करते, ऐसों ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चल रहे हैं। और ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं मर्तबों में बढ़ा देते हैं। अल्लाह हमारे भी मर्तबे बढ़ा दे। बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला बड़े इल्म वाला है। और हमने इनको इसहाक दिया और याकूब अलैहिस्सलाम, हर एक को हमने हिदायत की। और पहले ज़माने में हमने नूह को हिदायत की और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को जजा दिया करते हैं। और इसी तरह जकरिया, याहिया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम को, सब नेक लोगों में शामिल थे। और इसी तरह इस्माइल को और यसा को और यूनुस को और लूत अलैहिस्सलाम को और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फजीलत दी। नीज इनके कुछ बाप दादाओं को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को, और हमने इनको मकबूल बनाया और हमने इनको राह रास्त की हिदायत की। 18 18 नबियों के नाम प्रॉफिट्स के। अल्लाह ताला ही की हिदायत है जिसके ज़रिए से अपने बंदों में से जिसको चाहे इसकी हिदायत करता है। और अगर बिलफर्ज या हजरात भी शिर करते, इसको नोट कीजिए, इतनी नेकियां करने वाले, इतनी दावत इल्लाह करने वाले भी अगर शिर कर जाते तो क्या होता? तो इनके वो अमाल जो करते थे सब एकारत कर दिए जाते, यानी वो सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाते। ये लोग ऐसे थे कि हमने इनको किताब और हिकमत और नबुवत अता की थी, बस अगर ये लोग नबुवत का इनकार करें तो हमने इसके लिए ऐसे बहुत से लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं। यही लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की थी, बस आप भी इन्हीं के तरीके पर चलिए। और आप कह दीजिए, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, ये तो सिर्फ तमाम जहान वालों के वास्ते एक नसीहत है। कुरान पढ़ने का मुआवजा ना कोई दे सका और ना कोई ले सका, क्योंकि ये तो एक नसीहत है, एक अल्लाह ताला का तोहफा है जिसको उसके बंदों के साथ शेयर करना हर एक का फर्ज है। अब सवाल ये कि लोग शिर्क क्यों करते हैं, दिल में आना चाहिए, क्योंकि सूरत में बहुत शिर्क की बात आ रही है। तो जवाब आपके सामने है, आयत 91, वमा कदरुल्लाह हक कदरी, और इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करना वाजिब थी वैसी कदर ना की, यानी अल्लाह की ना कदरी है शिर्क। जबकि उन्होंने यूं कह दिया कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नाजिल नहीं की। आप ये कहिए कि ये किताब किसने नाजिल की है जिसको मूसा अलैहि सलाम लाए थे, जिसकी कैफियत ये है कि वो नूर है और लोगों के लिए हिदायत है, जिसको तुमने इन मुतफरिक और आँख में रख छोड़ा है, तौरात की तरफ इशारा, जिनको जाहिर करते और बहुत सी बातों को तुम छुपाते हो, और तुमको बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जिनको तुम नहीं जानते थे और न तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, फिर इनको इनके खुराफात में खेलते रहने दीजिए। कितनी बड़ी दलील है कि ये कुरान अल्लाह की किताब, और ये भी ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाजिल किया, ये बड़ी बरकत वाली है, अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, ताकि आप मक्का वालों को और आसपास वालों को डराएं, और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं, और वो अपनी नमाज पर मदावमत रखते हैं, यानी हमेशा पढ़ते हैं। अल्लाह हमें भी नमाजों की हिफाजत की तौफीक दे। फिर आगे दोबारा इन्हीं की गलत चीज़ों पे तनकीद, वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, और इस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ तोहमत लगाए, या यूं कहें कि मुझ पर वही आती है। झूठा ख्वाब बयान करना भी अल्लाह पर तोहमत होता है, और झूठी वही का दावा करना यानी झूठी नबूवत का दावा तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा जुर्म है। या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है हालांकि इसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई, और जो शख्स यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया इस तरह का मैं भी लाता हूँ, और अगर आप उस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह तआला की आयात से तकबर करते थे। देखिए, झूठी नबूवत के दावेदार और झूठा दीन लोगों को देने वालों की सजा है इधर। और फिर उसके बाद खूबसूरत आयत, इस पर एक लेक्चर भी है, और मैं मर गया के नाम पे, वलकद जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, अपने आप को जहन में रख के सुनिए, और तुम हमारे पास तन तनहा आ गए जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ आए। सोचिए, कोई दुनिया से गया रिसेंटली, पूछिएगा साथ सेलफोन गया, गाड़ी की चाबी गई, कुछ साथ नहीं जाएगा। पर हम तुम्हारे हमरा तुम्हारे इंशिफात करने वालों को नहीं देखते जिनकी नस्बत तुम दावा रखते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं, वाकई तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो गया और तुम्हारा दावा सब तुमसे गया गुजरा हो गया, ना घर ना माल ना औलाद कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी। बेहतर है कि दुनिया में इन चीज़ों को लेकर अल्लाह के साथ जुड़ जाइए, तदब्बुर और अमल, आयात पे अमल, शरई मसाइल के हल के लिए उलमा से राबता करें। आपका इल्म जितना ज्यादा होगा दुनिया और आखिरत में उतनी बुलंदी मिलेगी, यानी कच्ची पक्की बातों के जवाब ना दिया करें लोगों को आगे, नहीं आता तो कह दे नहीं आता, पूछ के बता दूंगी, कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी अगर आपको किसी बात का जवाब ना आया। इमाम मालिक ने 40 सवालों के जवाब पे एक ही बात कही थी, लादरी लादरी, तो हम कोई बहुत ज्यादा बड़े आलिम तो नहीं है। नमाजों की इनके अरकान और शरायत के साथ अदायगी करनी है, अल्लाह ताला के रूबरू पेशी के दिन को सामने रखकर अपनी बड़ी बड़ी नेकियों और बड़े बड़े गुनाहों का मवासना कीजिए कि अगर नेकियां हैं तो कहीं साथ साथ तुम्हारे गुनाह तो नहीं। कुरान से रहनुमाई इस जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बेहतरीन नतीजा और तोहफा सिरात मुस्तकीम है, क्योंकि हिदायत एक हदिया है। नसीहत हासिल करने की नीयत से कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होना है ताकि खैर और बरकत हासिल हो। दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी और आप तन तनहा अल्लाह के सामने पेश होंगे। ज़रा अपनी वापसी को तो याद कीजिए, क्या होगा वो दिन, मेरे साथ क्या जाएगा। आज अपने घर की चीज़ों को हसरत से देखिएगा जैसे कोई जाने वाला देखता है। गौर व फिक्र के गोशे, अल्लाह ताला के लिए छोड़ी हुई चीज़ का बदला बेहतरीन मिलता है। आप अपनी इज्जत छोड़ दीजिए, देखिए अल्लाह आपको कितनी इज्जत देता है। शिर्क अमाल को बर्बाद कर देता है और जहन्नुम में दाखिले और हमेशगी का सबब है। माल और औलाद दुनिया फानी की जीनत है, इनमें खोकर आखरत को नहीं बर्बाद करना, इनको साथ लेकर आखरत में जाना है। ये हमारी आखरत की कश्ती के चप्पू हैं। रोजे क्यामत औलिया के इबादत गुजार हसरत का शिकार होंगे कि हम उनकी इबादत क्यों ना करते जिनकी इन्होंने की, और आज हम इनकी तरह जन्नतों में होते। आगे अब पारे का अख्तिताम तौहीद के कुछ दलाइल हैं। इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नबा, आयत 95। बेशक अल्लाह तआला दाने को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वो बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह तआला ये है, सो तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। वो सुबह को निकालने वाला है, इसने रात को राहत की चीज बनाया है और सूरज और चांद को हिसाब से रखा है। ये ठहराई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर है बड़े इल्म वाला, और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके जरिए से अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में रास्ते मालूम करो। बेशक हमने दलाल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए इन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। सितारों के तीन मकासिद में से एक मकसद आपको यहाँ मिल गया। आगे बाकी मिलते जाएंगे, सूरह हिजर में भी आएगा और सूरह मुल्क में भी। और वही है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द होने की, यानी दुनिया और तुम्हारी कब्र। समझने वालों को हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके जरिए से हर किस्म की नबातात को निकाला, फिर हमने इससे सब शाख निकाली कि इससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं। छल्ली या कॉर्न या माइस को जहन में लाइए, कैसे दाने पे दाना चढ़ा होता है, जैसे मुतराकिबा कतारें बनी होती हैं। और खजूर के दरख्तों से इनके गुच्छे हैं, खोशे हैं जो नीचे को लटक जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। और हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और इसके पकने को देखो। इनमें दलायल इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वक्त तो इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ ईमान के पकने और फल के पकने को देखिए। अल्लाह ने कहा गौर व फिक्र करो, जैसे फल शुरू में कच्चा होता है, कच्ची केरी कड़वी होती है, फिर जरा सी पकती तो खट्टी हो जाती है, फिर पकती है तो मीठा आम बनता है। ईमान भी शुरू में कड़वा होता है, रोना ही नहीं खत्म होता, फिर खट्टा मीठा होता है, फिर कहीं जाके मीठा होता है। दुआ करें अल्लाह ईमान को यकीन के दर्जों पर पहुँचा के इसकी मिठास दे दे। नए नए लोग कहते हैं हमें तो बड़ी बातें सुनाते थे जी, ईमान के बाद ये होता है वो होता है, हमारी तो मुखालफत शुरू होगी, हमारे तो घर वाले दुश्मन हो गए। तो उस वक्त इस मिसाल को जहन में रखिएगा। आखिरी आयतें, और लोगों ने शैतान को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है, और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है उन चीजों से जो के वो करते हैं, और वो आसमान और जमीन का मूजिद है। अल्लाह तआला की औलाद कैसे हो सकती है हालांकि इसके पास तो कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह तआला ने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज को खूब जानता है। ये अल्लाह तआला तुम्हारा रब इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज का पैदा करने वाला है, तो तुम इसकी इबादत करो और वो हर चीज का कारसाज है। अल्लाह आपके मेरे सारे कामों को अपने हाथ में ले ले, इसको तो किसी की निगाह मोहित नहीं हो सकती, और वो सब की निगाहों को मोहित हो जाता है, और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है, वो सबको देखता है और उसको कोई नहीं देखता। अब बिला शुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बीनी के जराए पहुंच चुके हैं, बस जो शख्स देख लेगा वो अपना फायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। देखिए क्या खूबसूरत आयत है, अल्लाह के नबी भी आपके मेरे निगरान नहीं है। हक आ गया, कुरान आ गया, अब आप जाने और आपका मामला। और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर करें। नबी पर इल्जाम लगाते थे, आता जाता इनको कुछ नहीं पता, नहीं किससे सुन सुना के पढ़ पढ़ा के आते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द पेश कर दिया। कैसी बातें, इनकी फिक्र ना करें, आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब्बे ताला की तरफ से आपके पास आई है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ख्याल ना कीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया, और ना आप इन पर मुख्तार हैं। और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो जाहिलाना जिद से गुजर कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीके वालों को इनका अमल मरगूब बना रखा है, फिर अपने रब ही की तरफ इनको जाना है, सो वो इनको बतला देगा जो कुछ भी वो किया करते थे। अल्लाह पे मामले डाल दें। और इन लोगों ने कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह ताला की कसम खाई है कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो वो जरूर इस पर ईमान लाएंगे। आप कह दीजिए कि निशानियां सब अल्लाह ताला के कब्जे में हैं, और तुमको इसकी क्या खबर कि वो निशानियां जिस वक्त आ जाएंगी ये लोग तब भी ईमान ना लाएंगे, और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे। ये आखिरी आयत जरा गौर से सुनिएगा। ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये लोग इस पर पहली दफा ईमान नहीं लाए, और हम इनको इनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे। एक दफा आप हिदायत से दूर तो हों फिर नहीं मिलेगी। हिदायत बहुत गयूर मेहमान है, आपके दिल पर टक 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 नॉक करता है, टिक 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 टिक। दरवाजा खोल देंगे तो अंदर आ जाएगी, आप दरवाजा ना खोले दूसरी बार तीसरी बार नॉक करेगी फिर भाग जाएगी। ये कोई राह पड़ी नहीं मिलती, इसलिए दुआ करें अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बड़ी खूबसूरत आयत है जिस पे पारा पूरा हो रहा है। अमल देख लीजिए, रात को जल्दी सोया करें क्योंकि ये फितरत भी है और सुन्नत रसूल भी है। नियत करते हैं फिर सुबह पारे में भी फ्रेश रहेंगे। आमाल की बर्बादी से अल्लाह की पनाह मांगनी है, और ये दुआ मांगते रहिए, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। कुरानी रहनुमाई, कुरान पाक की आयात के मकासिद को समझने के लिए अपने दिल को खोलना और अकल को ताबे करना है। अकल झुकानी पड़ती है, ये जुमला लिख लें, दिल को खोलना और अकल को झुकाना पड़ता है, फिर कुरान से हिदायत मिलती है। अंदर अकड़ हो तो कहाँ कुरान समझ आएगा। हिकमत दाई दीन का बेहतरीन हथियार है, दीन से रुख मोड़ने वाले की सजा हिदायत और दीन से महरूमी है। गौर व फिक्र की बातें, कायनात की मामूली से मामूली और कमतर से कमतर चीज़ को बनाना भी सिर्फ अल्लाह ही की कारीगरी है। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात का इल्म तो हासिल हो सकता है, लेकिन किसी का इल्म अल्लाह की ज़ात और सिफात का मुकम्मल अहाता नहीं कर सकता। मसलियत का तकाजा है कि कुफार के माबूदों को बुरा ना कहा जाए, वरना अंदेशा है कि वो इस्लाम को बदनाम करेंगे। हलाल जराए से हासिल किया गया हराम भी हराम ही होगा, अल्लाह हराम से बचाए। तो ये था आज का पारा, कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। मतरूक सुन्नतों में से एक सुन्नत जिस पे आज उम्मत मुस्लिमा अमल नहीं कर पा रही, अजान सहरी और अजान फजर के दरमियानी वक्फे में क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की गई, सहाबी कहते हैं हमने सहरी खाई, फिर आप सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने पूछा कि सहरी और अजान में कितना फासला होता था, तो उन्होंने कहा 50 आयतें पढ़ने के मुवाफिक फासला होता था। ये सही बुखारी की रिवायत है 1921। तो क्या पता चला कि नमाजों के और अजान और कामा के बीच का फर्क भी मसनून होना चाहिए, गैर मसनून ना हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.